हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 और 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्व। करारविंदे न पदारविंदम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिभे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविंद धामो धर्माधवेति। ब्रजीव संतं नवनीत चोरं, गोपांगनानां चदुकूल चोरं। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं, चोराख्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति रे ये स्तवे, वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे
गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवायतस्मे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 15 पांडवों का सामयिक प्रस्थान। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए, परंतु वहां जाकर उन्हें पता चला कि भगवान तो पहले ही इस धराधाम से अपने नित्य धाम में जा चुके हैं और इतने समय तक युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के सामने आए तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे बताऊं कि हमारा सबसे बड़ा धन, हमारा सबसे प्रिय मित्र, हमारा सबसे बड़ा सुहृद कृष्णा भी इस भौतिक धरातल पर नहीं है। परंतु भगवान की कृपाओं को याद करते करते अर्जुन कुछ बोलने का साहस कर रहा है। और अर्जुन ने बताया कि आज तक हमें जो भी आनंद मिला है, जो भी यश मिला है, जो भी सुख मिला है, जो भी विजय मिली है, उस सब का कारण केवल कृष्ण का साथ था। क्योंकि कृष्ण हमारे साथ थे, इसके कारण ही हमें सब समृद्धि प्राप्त हुई। इसी बात को बढ़ाते हुए आज अर्जुन कहते हैं श्लोक नंबर 15 में, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमु श्वधप्रा राजन्य वर्रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथ पाना आयुर्मनासि च दृशा सह ओज आचात यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य च उश्वधप्र राजन्य वर्यरथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूत पाना आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आचत यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमोश्वदब्र राजन्य वर्यरथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथ पाना आयुर्मनासि च दृशा सह ओज आचत। शब्दात यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य, यो मन केवल वो ही, केवल भगवान ही के कारण, भीष्म कर्ण बीच महादेव जो कि अजय थे, जो कि अमर थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, कर्ण और गुरु गुरु द्रोणाचार्य शल्य चमुष का मतलब बताए व्यूह के मत में, बहुत सारा जो युद्ध हो रहा था उस समय जो व्यूह था उसमें अधभ्र, अधभ्र मतलब विशाल कौरवों की सेना में ये सब अजय थे और विशाल थी सेना, पूरी नारायणी सेना भी उनके साथ थी और उनकी सेना बड़ी विशाल थी। राजन्य वर्य रथ मंडल मंडित, राजन्य वर्य बड़े बड़े राजा थे, रथ मंडल रथों की श्रृंखला थी और मंडिता सुमना अलंकृत थे, कोई साधारण सेना नहीं थी वो। लेकिन क्योंकि भगवान हमारे साथ थे इसलिए आगे भी कहते हैं अग्रेचर मम विभु, ये मेरे भाई हे राजा हे राजन, रथ युत पाना, जितने सारे रथी थे वहां पर भगवान की कृपा से उनकी आयु, उनका उम्र जो था, हालांकि भीष्म पितामह की आयु समाप्त होने वाली नहीं थी लेकिन क्योंकि कृष्ण अग्रेचर थे तो आयु मनासी मतलब मानसिक, जो उनका मानसिक जो बल था, जो बहुत उनकी पट्टू व्यवस्था थी वो चादृशा, केवल भगवान क्योंकि आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे था, भगवान रथ पे आगे बैठे होते थे और दृशा एक चित्वन से खाली वो देखते थे। सह ओज आर्चत और उनकी सारी शक्ति, उनका सारा पराक्रम आर्चत यानी वापस ले लेते थे, क्योंकि ये भगवान हमारे साथ थे तभी हम उनको इतने अजय शत्रुओं को हरा सके, क्योंकि भगवान आगे बैठे होते थे, भगवान देखते थे और उनकी सारी शक्ति हरण कर लेते थे, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं फटाफट उनको मार डालता था। अनुवाद, एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्धभूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को निकाल दिया था। उन सब की योजना अत्यंत पट्टू थी और आवश्यकता से अधिक थी लेकिन उन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कुछ कर दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण घटघट व्यापी हैं, अपने परमात्मा अंश से विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति विस्मृति ज्ञान बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूँ और वहां पर बैठकर उसको क्या देता हूँ, मत्तः स्मृति ज्ञानम मपोहनम, स्मृति भी देता हूँ बुद्धि भी देता हूँ और साथ में विस्मृति भी देता हूँ। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। भगवान का कार्य था, भगवान ने कहा है मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे, भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी, ये भगवान की योजना थी। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्ति मान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। ये भगवान की शक्ति से अर्जुन को भगवान ने कहा है निमित्त मात्र भवस्व सव्यसाची, ए सव्यसाची इनको तो मैंने पहले ही मार डाला है, मेरी शक्तिमान इच्छा के द्वारा मैंने इच्छा की है कि इन सबका वध होना चाहिए तो समझो हो गया, अब तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, उठो और यश प्राप्त करो। विरोधी पक्ष में भीष्म द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे, अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने युक्तियों से सहायता ना की होती अर्जुन का जीतना कठिन था। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे अर्जुन आज मान रहा है कि यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चम, ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे कि अर्जुन गांडी उठाता और वो साथ में हथियार फेंक के खड़े हो जाते और वो मर जाते। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। गुरु द्रोणाचार्य साक्षात अर्जुन का गुरु था, अर्जुन ने युद्ध कला सीखी थी गुरु द्रोणाचार्य से। कृपाचार्य, शल्य, कर्ण ये कोई ऐसे योद्धा थोड़े थे कि किस उनको हराया जा सके, लेकिन क्योंकि भगवान ने युक्तियों से, अभी हम महाभारत देखते हैं, हर एक योद्धा को मारने के लिए भगवान ने एक अलग युक्ति, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि उसको मरना है, तो भगवान कोई ना कोई युक्ति से उनको मार रहे थे और अर्जुन जो है मतलब युक्ति निकाल रहे थे, तो अर्जुन आसानी से उनको भीष्म पितामह को क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब भगवान ने क्या किया, द्रौपदी को लेके गए। द्रौपदी को बोला देखो तुम्हें ना धीरे से जाना भीष्म पितामह के यहाँ पर। जब युद्ध होता था तो रात को क्या होता था, सब अपने अपने जो खेमे लगे हुए थे टेंट उनके अंदर बैठे होते थे, तो द्रौपदी को कहा कि तुम घूंघट करके जाओ और भीष्म पितामह से अखंड सौभाग्यवति का आशीर्वाद ले लो। तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम द्रौपदी हो, तो तुम जाके उनसे आशीर्वाद लो। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ जा रहे हैं आधी रात को भीष्म पितामह के कक्ष में। रास्ते में द्रौपदी के चप्पल की आवाज आ रही थी, तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे ये चप्पल से आवाज आ रही है, ये मुझे दो, मैं पकड़ता हूँ, तो धीरे धीरे पांव रख के चलो ताकि दूसरे लोग को पता नहीं चले, दुर्योधन इत्यादि को। तो भगवान चप्पल पकड़ के चल रहे हैं द्रौपदी के, और वो धीरे धीरे भीष्म पितामह के कक्ष में गई। भीष्म पितामह ने समझा शायद दुर्योधन की जो पत्नी है वो आई है, तो भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट ऊपर कर लिया, बोला पितामह अब तो आपने आशीर्वाद दे दिया है, अब जब तक आप सेनापति बने रहे तब तक मेरा अखंड सौभाग्यवती बनना संभव नहीं है, आपको हारना पड़ेगा। अब आप ही बता दो कि आपको कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि आपके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप कैसे हटोगे हमारे रास्ते से, क्योंकि जब तक आप हमारे रास्ते में हो तब तक तो पांडवों का विजयी होना संभव नहीं है। इसके बाद भीष्म पितामह ने बताया देखो उत्तरी, अगर मुझे हराना है तो मेरा प्राण है कि मैं कभी भी स्त्री पर हथियार नहीं चलाता। भीष्म कभी भी स्त्री पर हथियार नहीं चलाते, और जैसे हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनमें से जो अंबा थी उसने ये प्रण किया था कि मैं भीष्म पितामह को मारने के लिए बारंबार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ही भीष्म का की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वही अंबा अभी द्रौपदी की अर्ध बहन, अर्ध नारी के रूप में वो उसने जन्म दिया था, मतलब उस भीष्म पितामह को पता था कि ये अंबा ही है और वो आदि स्त्री और आदि नर, तो वो युद्ध में थी और अर्जुन ने उस समय उसको अपनी ढाल बनाया, क्योंकि भीष्म स्त्री पर हथियार नहीं चला सकते थे और वो सामने खड़ा था, तो अर्जुन उसको ढाल बना के उसके पीछे युद्ध कर रहा था और तीर मार रहा था। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिस जिस को भी मारा, ये सब योजना श्री प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि भगवान ने युक्तियों से सहायता की, अगर ऐसा ना किया होता तो अर्जुन का जीतना कठिन था बल्कि असंभव था। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनीतिक दांव पेच द्वारा संपन्न की जाती है। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। यही भगवान की भक्ति की विधि है। मतलब अगर एक भगवान का भक्त बन जाता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अनन्या चिंतयंतो माम ये जना भरी उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। उसके योग और क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ, उससे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उसका सब प्रबंध कर देता हूँ। तो अर्जुन आज भगवान की उन कृपाओं को याद कर रहे हैं और उन्हीं के विषय में कहते हैं। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, यत्तोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म करणा नप्त्रीत्रिकर्त शल्य सैंधव बालिकाध्यै अस्त्राण्यमोक महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्निरहरिदासमिवा सुराणि यद्दोषुमा प्रणिहिता गुरु भीष्म करणा नप्त्री त्रिकर्त शल्य सैंधव बालिकाध्यै अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्निहरिदासमिवा सुराणि। यद मतलब जिसके अंतर्गत, ये भगवान ही की कृपा थी जिसके कारण, दोषु मतलब हथियारों की सुरक्षा, मां प्रणिहितम मतलब मुझ पर ये सब, बहुत ही योद्धा जो थे वो अजय थे, वो सब मुझ पर हथियार लगा रहे थे। गुरु भीष्म कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण निपत, नपत्री मतलब भूरीश्वरा एक राजा है वो, और त्रिगर्त राजा सुशर्मा, शल्य सैंध्य राजा जयद्रथ, सैंध्य जो सैंधी नरेश थे इसलिए उनको, और बालिक यानी महाराजा शांतनु, भीष्म के पिता के भाई वो बालिक राजा हैं, वो सब अपने अपने अस्त्र मुझ पर मार रहे थे। अस्त्राणी यानी अस्त्रों को अमोघ, वो अस्त्र बिल्कुल अमोघ थे, चूकने वाले नहीं थे। महिमानी वो बहुत अत्यंत शक्तिशाली थे। निरूपताणी और न अस्पृशु यानी उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, वो सब अपने अपने अमोघ अस्त्र मुझ पर मार रहे थे मगर उन्होंने छुआ तक नहीं। और नृहरिदास, नृहरि जो यानी भगवान श्री नरसिंह देव उनके दास अर्थात प्रहलाद महाराज, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को भी हिरण्यकश्यपु के असुराणी मतलब असुरों के द्वारा प्रयुक्त हथियार, उनके सारे असुर मिलकर एक छोटे से बच्चे प्रहलाद को मारना चाहते थे। प्रहलाद के पास क्या शक्ति थी, क्या बल था, कुछ भी तो नहीं था, उसके पास केवल भगवान की सहायता थी। और भगवान की सहायता के कारण हिरण्यकश्यपु के सारे जितने भी राक्षस थे वो मिलकर भी प्रहलाद महाराज को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। वही उसी तरह मेरे अंदर कोई बल नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये सारे भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य शल्य जयद्रथ वो सब मिलकर मुझे मारना चाहते थे। उनके हथियार अमोघ थे, उनका उनकी शक्ति अचिंत्य थी, परंतु क्योंकि भगवान मेरे साथ थे, यह दोष जिनके कारण मैं इन सबसे बच सका, वरना तो वो मुझे उसी समय मार डालते थे। अनुवाद देखिए, भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्वा सुशर्मा शल्य शैद्रथ तथा बालिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी यानी भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा बाल भी वंका नहीं कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से इन सब राजाओं के विषय में हमें बताएंगे। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय हो। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज निरहरिदास जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी निरहरि भगवान का वह स्वरूप जो नरसिंह रूप बन के आए थे और उनकी उनके दास अर्थात प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परम भक्त थे, उनकी कथा श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में दी गई है। भगवान की कृपा रही, भगवान का साथ रहा, भगवान और हम सबका यही प्रेम से यदि हम श्रवण करते रहेंगे तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे और हम इस परम पवित्र कथा को सातवें स्कंद में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे से बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकश्यपु के क्रोध भाजन बने, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन वे अपने पिता की सभी घातिक कार्रवाइयों से बच गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे और हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गांडा सा उठाया और तो नरसिंह देव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता को पुत्र के समक्ष मार डाला। इस तरह भगवान के भक्त को कोई भी नहीं मार सकता, इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया। यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंद्वी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अन्य सैनिक जितने भी राजा जो थे जो अर्जुन को मार रहे थे उनके विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले कर्ण के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्ण ये महाराज पांडव के विवाह होने से पूर्व सूर्य देव से प्राप्त कुंती के प्रथम पुत्र थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान की बालियों सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उनका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने कड़े तथा बालियां इंद्रदेव को भेंट कर दी थी और उसके बाद वैकर्तन कहलाए। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया था। बाद में अधिरथ ने उन्हें उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उन्हें अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी थे, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों को दान देते समय वे अपनी सर्वस्व देने को प्रस्तुत होते थे। इसी दानी स्वभाव से उन्होंने अपने कड़े तथा बालियां इंद्रदेव को दे दी थी, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया था। वे द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुए थे और प्रारंभ से ही उनमें तथा अर्जुन में स्पर्धा थी। अर्जुन से स्पर्धा यानी अर्जुन से वो हमेशा मुकाबला करना चाहता था, उनसे युद्ध करना चाहता था। उसको देखकर ही दुर्योधन ने उन्हें अपना संगी बना लिया था। क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वे द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे और जब उस सभा में उन्होंने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह शूद्र बड़े का पुत्र है। यद्यपि उन्हें उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन का विरोध किया। विशेषतः कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कारण से अत्यधिक प्रसन्न था क्योंकि अर्जुन से उसकी स्पर्धा चलती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंगदेश का राजा यानी अंगराज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रौपदी पर हमला कर दिया जाए क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा, फलतः वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण अर्जुन तथा भीमसेन दोनों द्वारा कई बार हारे। वे बंगाल उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य के राजा थे। बाद में वे महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सक्रिय रहे और जब शकुनी द्वारा समझाए जाने पर प्रतिद्वंद्वी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और जब द्रौपदी दाव पर चढ़ी गई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए थे। इससे उनके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दाव पर लगाया गया उन्होंने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर यह सूचना दी थी और उन्होंने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी थी। उन्होंने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा था क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वे पांडवों के स्थायी दुश्मन बने रहे और जब जब अवसर मिलता रहा वे उन्हें नीचा दिखाते रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने पहले ही परिणाम जान लिया था और अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वे भीष्म का सदैव विरोध करते रहे और कभी कभी गर्वित होकर कहते थे कि यदि भीष्म उनकी योजना में दखल ना दे तो वे पांडवों को 5 दिनों में जीत सकते हैं, लेकिन भीष्म की मृत्यु के पश्चात वे अत्यंत मर्माहित हुए। उन्होंने इंद्र से प्राप्त शक्ति द्वारा घटोत्कच जो उसका भीम का पुत्र था उसका वध किया। अर्जुन ने उनके पुत्र वृषसेन का वध किया। उन्होंने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। अंत में अर्जुन से घनघोर युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने ही अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया और जब वे उस पहिये को ठीक करने के लिए नीचे उतरे तो लाख मना करने पर भी अर्जुन ने उन्हें मार डाला। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उस योजना के विषय में बता रहे हैं कि वैसे तो कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था, लेकिन क्योंकि वो विवाह से पहले सूर्यदेव ने कुंती महारानी को दिया था और क्योंकि वो एक शूद्र के यहाँ पर रहा था इसलिए पूरी जिंदगी उसे शूद्र पुत्र कहा गया और ये उनके लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी। लेकिन दुर्योधन क्योंकि उसका मित्र बन गया, देख रहा था कि ये पांडवों का और अर्जुन का विशेष प्रतिद्वंद्वी है, तो क्योंकि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र, ये दुर्योधन की योजना थी और दुर्योधन कर्ण से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत मित्रता बहुत ज्यादा थी और उसने अंगराज बनाया उसको। जब युद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका पहिया कीचड़ में घिस गया और जैसे अभी इसने क्या किया था, तीर चलाया था अर्जुन के ऊपर तीर चलाया, वो डायरेक्ट से अर्जुन की गर्दन पर लगने वाला था, लेकिन भगवान की योजना थी। भगवान ने क्या किया, घोड़े जो थे ना उस भगवान के रथ के, उनको ऐसे जोर से भगवान ने रथ के ऊपर पांव रखा तो घोड़े जो हैं वो नीचे झुक गए, उनके टांगे ऐसे टेढ़ी होकर नीचे झुक गए और जो रथ जो तीर आ रहा था गर्दन पर लगने वाला, वो अर्जुन के मुकुट पे लगा और मुकुट गिर गया। और उसके बाद जब उनका रथ नीचे घुस गया था पहिया, तब भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम खड़े देख क्या रहे हो, मारो इसको, ये वही है जिसने द्रौपदी को वेश्या कहा था, ये वही है जिसने दुर्योधन को और दुशासन को यहाँ आज्ञा दी थी कि भरी सभा में तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र करें। तुम इसके सामने खड़े हो, युद्ध में खड़े हो और हथियार नहीं चला रहे हो, चलाओ हथियार और मार डालो इसको। जब भगवान ने उसको वो सब अर्जुन को याद करा रहे थे, तो अर्जुन ने देखा ही नहीं कि वो नीचे खड़ा है या ऊपर खड़ा है, अर्जुन ने उसका वध कर दिया। तो ये भगवान की योजना थी। आगे इसके बाद श्री रूपा जी नप्ता या भूरी श्रवा के विषय में बता रहे हैं। जब दुर्योधन श्रीमद् भगवद गीता में अपनी सेना के विषय में बता रहे थे ना, तब दुर्योधन ने सबसे पहले कहा था, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निभो दद्वेजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते। ये तो मैंने आपको उनकी सेना के विषय में बताया है, अब मैं आपको अपनी सेना के विषय में बता रहा हूँ। और श्लोक नंबर 8 में दुर्योधन ने भूरिश्रवा का नाम लिया था। उन्होंने कहा था दुर्योधन ने, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदस्तस्तथैवच। भवान यानी वो अपने गुरु को कह रहे हैं, आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरेश्वरा आदि, ये भूरेश्वरा हैं, उनके विषय में श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भूरेश्वरा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था, शल्य उसका भाई था, दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्ति मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की दात दी थी, और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्र को सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा ना करें। इन सबों ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया था। उसके पास एक अक्षोहिणी सेना थी, इसमें पैदल सिपाही और घुड़सवार हाथी और रथ शामिल थे, और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे युद्धपतियों में से मानते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था और उसने सात्यकी के 10 पुत्र को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए थे, तब सात्यकी ने उससे मार डाला था। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में लीन हो गया था। आगे त्रिगर्त या सुशर्मा, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था और त्रिगर्त देश का राजा था और द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था और उसने दुर्योधन को मत्स्य देश यानी दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय उनसे महाराज विराट को बंदी उसने महाराज विराट को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी यह वीरतापूर्वक लड़ा था, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया था। जयद्रथ, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का अन्य पुत्र था, मतलब ये जो पहले वाला था ना त्रिगर्ता या सुशर्मा, ये और जयद्रथ दोनों भाई थे, वो भी वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था और ये भी, और यह सिंधु देश आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है, ये सिंधु देश का राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुशाला था। यह भी द्रौपदी स्वयंवर में गया था और उसने विवाह करने के लिए द्रौपदी से विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से द्रौपदी के निकट जाने के फेर में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्य जा रहा था, तो उसने रास्ते में काम्य वन में एक बार द्रौपदी को फिर देखा और अत्यधिक आकृष्ट हुआ था। तब पांडव तथा द्रौपदी अपना राज्य जुए में हरा कर वनवास में थे और तब जयद्रथ ने अपने संगी कौटिशश्य के द्वारा अवैध तरीके से द्रौपदी के पास समाचार भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह से ठुकरा दिया, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना अनुरक्त था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने ना की। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और द्रौपदी को रथ पर बिठाने में सफल हो गया। धौम्य मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। वह रथ के पीछे पीछे गए और धात्रेयक्का के द्वारा उसकी सूचना महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी विकट पिटाई की। उसने उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट दिए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और उसे उसी अवस्था में उनके सन्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्म स्वीकृत कर लिया तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। उस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। उस इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को एक एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह दुर्योधन के पक्ष में रहा। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे तो पांडव इसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिवजी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा ली। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से उसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा करने नहीं दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया। जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जयद्रथ को शिवजी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत ही मर जाएगा। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता के गोद में फेंकें जो समंत पंचक तीर्थ में तपस्या कर रहा है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए शेर को अपनी गोद में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अतएव उसने तुरंत ही सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसका सिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और उसका पिता तुरंत ही मर गया। तो ये थे जयद्रथ जो सिंधु नरेश थे। ये बहुत ज्यादा पांडवों से विरोध करते थे और द्रौपदी की ओर भी बहुत ज्यादा आसक्त थे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि वो सदैव ऐसी योजना बनाते थे कि किसी तरह से मैं द्रौपदी को प्राप्त करूं। और जब ये पांडव दुर्योधन का द्यूत प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद पांडव हार गए थे और वन में गए थे, उस समय द्रौपदी को जब उन्होंने रथ पे बिठाया था और लेके गए थे तब बहुत ज्यादा इनका बहुत दुर्दशा की थी। इन्होंने पांडवों ने मारा था उनको बहुत ज्यादा, भीम ने उसकी बहुत पिटाई की थी और उसका सिर इतना बुरी तरह से हजामत की थी कि पांच चोटियां रखी थी, पांच चोटियां मतलब हरा दिया था बिल्कुल बुरी तरह से, और उसको इतना मजबूर कर दिया था सबके सामने यह कहलवाने के लिए कि हाँ मैं पांडवों का दास हूँ, मैं युधिष्ठिर का दास हूँ, ऐसे कहने। फिर इतना अपमान वो सहन नहीं कर सका और वो सोच रहा था मैं किसी तरह से इस अपमान का बदला लूं, और क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी तो फिर उसने शिव जी का बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या करने के बाद शिव जी से वरदान मांगा कि मैं एक दिन ऐसा होना चाहिए कि मैं पांचों पांडवों पर भारी रहूं, एक दिन ऐसा होना चाहिए कि मैं पांचों पांडवों पर भारी रहूं। और ये वो दिन था जिस दिन अभिमन्यु की मृत्यु थी। अभिमन्यु को सात महारथी मार रहे थे और जयद्रथ इन पांचों पांडवों को घेर लिया, वो आगे नहीं जाने दे रहे थे, और इसके कारण क्योंकि वो आगे नहीं जा सके इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु होगी। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ की मृत्यु करूंगा, जयद्रथ का वध कर दूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। और दूसरे दिन जयद्रथ ने सोचा, वो भागना चाह रहा था, वो युद्ध छोड़ के जाना चाह रहा था, मगर दुर्योधन ने कहा नहीं तुम भागो नहीं, तुम यहीं रहो, हम सब तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और उसको एक बहुत ही दूर किसी मतलब क्योंकि युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा था ना, उसको एकदम दूर वाले कोने में जाके छुपा लिया, और वहां से अर्जुन को नजर नहीं आ रहा था, वो दिख रहा नहीं था, तो बहुत देर हो गई। अब अर्जुन ढूंढ रहा जयद्रथ नहीं मिल रहा, जयद्रथ नहीं मिल रहा, और सबको पता था कि अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि अगर सूर्यास्त होने से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन बहुत ढूंढ रहा था, बहुत देर हो गई थी, लेकिन अभी तक जयद्रथ नहीं मिला। भगवान ने सोचा अगर आज जयद्रथ नहीं मिलेगा तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। भगवान ने क्या योजना की, सूर्यदेव अभी दोपहर का समय था लेकिन सूर्यदेव को अस्त कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। सूर्यदेव अस्त हो गए, जब जयद्रथ ने देखा अब तो सूर्य अस्त हो गया है, और सूर्य अस्त होने के बाद अर्जुन ने यह घोषणा कर दी कि अभी मैं अग्नि समाधि ले रहा हूं, तो चिता बनाई गई। अर्जुन उस चिता के ऊपर बैठने ही वाला था कि जयद्रथ ने सोचा ऐसे शत्रु की मृत्यु को तो आंखों से देखना चाहिए, फिर वो खुद ही आ गया अर्जुन के, क्यों पहले छुपा हुआ था दिख नहीं रहा था, तो वो खुद ही आ गया और अर्जुन के सामने हंसकर ताली मार के ऐसे बोलने लगा, हाँ बड़ा आया मुझे मारने वाला, मुझे मारने पर चला था, अब देखो स्वयं ही अपने आप को मार रहा है, मुझसे जो वेर करता है ना उसका यही अंजाम होता है। ऐसे उल्टी सीधी बातें अर्जुन को बोल रहा था, अर्जुन को बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वो क्या करता, उसकी प्रतिज्ञा थी। उसी समय भगवान ने अपनी योजना से सूर्यदेव को पुनः स्थापित किया, मतलब पहले सूर्यदेव अस्त हो गए थे लेकिन भगवान ने इशारा किया सूर्यदेव पुनः आ गए, क्योंकि भगवान पूरी ये जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान ही कंट्रोलर हैं, और वो भगवान जो कि कंट्रोलर हैं, भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और जैसे ही भगवान ने इशारा किया सूर्यदेव सामने आ गए, और अर्जुन को भगवान ने कहा अर्जुन सूर्य अस्त नहीं हुआ है, दोपहर का समय है, अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा तो यह है कि तुम संध्या के बाद सूर्यास्त होने के बाद उसको अग्नि में प्रवेश करोगे, अभी तो सूर्य सामने खड़ा है, वो रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ, उठाओ गांडी और मार डालो उसको। ये वास्तव में भगवान की कृपा है। भगवान ने कह दिया समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ समान हूँ, किसी के साथ द्वेष नहीं करता हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो आप कहोगे ये तो आंखों देखा द्वेष है ना, दिख रहा है कि भगवान कौरवों के साथ द्वेष कर रहे हैं और पांडवों का पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने साथ में ये भी कह दिया ये भजन्ते तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं ये यदा माम प्रपद्यन्ते तं सतैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसी भाव से उसको प्रणाम देता हूँ, मगर ये तो डन है कि मैं किसी के साथ द्वेष नहीं करता हूँ, है ना। तो भगवान जिसके साथ भी भगवान का संपर्क हो जाता है, अब जयद्रथ है वो हो चाहे कर्ण हो या दुर्योधन हो द्रोणाचार्य हो जो भी हो, भगवान उनके साथ भी द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसी भाव से भगवान के पास आ रहे हैं। तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अगर तुम शत्रु बनकर मेरे सामने आओगे तो मुझे तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारा शत्रु बन जाओ, मतलब शत्रु बनना पड़ेगा। अगर तुम पिता बनकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा पितृ बन जाऊं, पिता पुत्र बन जाऊंगा, और अगर माता बनकर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, और अगर प्रेमी बन के आओगे मेरे सामने तो मैं तुम्हारा प्रीतम बन जाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, लेकिन मेरे कारण चाहे मैं किसी भी आप इच्छा से या किसी भी भाव से मेरे पास आओ, मेरे कारण तुम्हारी हानि कभी नहीं होगी। तो जितने भी कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में योद्धा मरे हैं भगवान की युक्तियों से, उन सब को मुक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि भगवान के दर्शन अंत समय में भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि इस युद्ध में जो भी मरेगा चाहे छोटे से छोटा सैनिक भी जिसका वध होगा उसको अंत समय में मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। वह भगवान जिनका मृत्यु के समय खाली नाम भी यदि मुख में आ जाए तो कल्याण हो जाता है, वह भगवान साक्षात आके खड़े हो जाते हैं। ये तो बड़े बड़े योगियों की, बड़े बड़े भक्तों की, बड़े बड़े ध्यानियों की एकमात्र इच्छा होती है कि जब मैं मरूं तो भगवान की स्मृति मुझे रहे, भगवान की याद आए, भगवान के दर्शन हो, और उन योद्धाओं को केवल युद्ध करके शत्रुता करके वह गति प्राप्त हो रही है। तो भगवान के संपर्क में आना मतलब करुणा, मतलब कृपा, मतलब कल्याण। तो हमें और लेकिन वही करुणा यदि हम भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ते हैं तो अर्जुन की तरह हर समय हर हाल में हर स्थिति में हमारी विजय होती है। इसलिए हमें सदैव भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाए रखना चाहिए, और कलयुग में उसका एक ही तरीका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।